अध्याय पांच प्राचीन भारत में भूस्वामित्व भूमिका। भूस्वामित्व का प्रश्न प्राचीन भारत में अत्यंत जटिल तथा विवादाग्रस्त प्रश्न है प्रश्न रहा है। समस्या यह भी थी कि भूमि पर राजा का अधिकार है अथवा पृथक पृथक लोगों का। सिंधु घाटी की सभ्यता में इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। वैदिक काल में भूमि पर सामूहिक अधिकार था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार भूमि सभी लोगों की संपत्ति है और राजा को केवल उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राज्य के भली भांति संगठित हो जाने के पश्चात राजा शक्तिशाली हो गया। भूस्वामित्व विभिन्न विचारधाराएं। भूस्वामित्व के संबंध में दो प्रकार की विचारधाराएं चल पड़ी हैं। एक के अनुसार भूमि का स्वामी राजा है और दूसरे के अनुसार जोतने वाले भूमि पर किसान का अधिकार है। अनेक विद्वानों ने इस बात का उल्लेख किया है कि प्राचीन भारत में भूमि का स्वामी राजा माना जाता था। कहने का अर्थ है कि किसान और अन्य लोग जो भूमि का उपयोग करते थे वे उसके बदले में राजा को शुल्क देते थे। उनका शुल्क पर स्वामित्व उपलब्ध नहीं था। कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि भूमि पर राजा का अधिकार न होकर उसके जोतने वाले अथवा किसानों का होता था। हिंदू विधि में किसानों को भूमि बेचने और खरीदने के अधिकार का उल्लेख मिलता है। इससे अनेक विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि भूमि पर किसानों का ही अधिकार होता था। विभिन्न ग्रंथों में इन दोनों विचारधाराओं का उल्लेख हुआ है। प्राचीन भारत के हिंदू विधि शास्त्री नीलकंठ ने भूमि के स्वामित्व संबंधी सिद्धांत का और अधिक व्यापक विश्लेषण किया है। यह संभव है कि कोई राजा किसी राज्य पर विजय के द्वारा अधिकार स्थापित कर ले, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि भूमि का स्वामित्व उसमें निहित हो जाता है। उसे कर लेने का अधिकार ही प्राप्त हो जाता है, स्वामी बनने का नहीं। इसी का व्यापक उल्लेख मीमांसा दर्शन नामक ग्रंथ में है। एक विद्वान भूमि के स्वामित्व संबंधी सिद्धांतों का बड़ा ही व्यापक विश्लेषण किया है। इसने इस मत को स्वीकार किया है कि भूमि का स्वामी राजा नहीं होता। भूमि तो किसान की होती है, राजा पर उस भूमि के संरक्षण का दायित्व होता है। लेखक के इन विचारों का उल्लेख निम्नलिखित पंक्तियों में मिलता है। देया नावा महाभूमि स्वत्वाद् राजा पालनस्त्येव राज्यत्वान्न स्वयंभूधीरते नासः। सदाम सर्वभौमे राजा विशिष्ट राजा विश्वजिदादो सर्वस्वं दादात तथा गोपत राजमार्ग जलाश्यादोन्ता महाभूमि अस्तेन दातव्या। कितः भूमिस्त दीय धनत्वात् राजा सर्वश्रेष्ठे ब्राह्मण वर्तमीति अस्मते इति प्राप्ते। भूमि दुष्ट शिक्षा शिष्ट परिपालनाभ्याम राज इसी तत्व स्मित्यमी प्रेत मीति नाराग्यम भूमिर्धनम किंतु तस्याम भूमो स्वकर्म फलम भुज्जानानाम सर्वेषाम प्राणिना साधारणम धनम अतो साधारणस्य भूखंडस्य सत्यपि दाने महाभूमे दानम नास्ति। भूमि छीनने का प्रश्न। इस संदर्भ में प्रायः कहा जाता है कि अनेक राजाओं ने अनेक लोगों से भूमि छीन ली और अन्य लोगों को दे दी। इस बात का लिखित प्रमाण ग्रंथों में मिलता है। इस संबंध में यही उत्तर दिया जाता है कि राजाओं का यह कार्य कुछ सिद्धांतों के लिए और कुछ के विरोध के लिए होता है। राजा जिन शुभ बातों की स्थापना करना चाहता था उसके लिए पुरस्कार देता था। राजा जिन था और वह पुरस्कार कभी कभी भूमि के रूप में भी दिया जाता था और जब दंड देना चाहता था तो उसकी भूमि छीन लेता था। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भूमि का स्वामी राजा अथवा शासक होता था। राजा को जब स्वामीन अथवा मालिक कहकर संबोधित किया जाता है तो उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि भूमि की उपज के छठे भाग का अधिकारी है। संपूर्ण भूमि का इस संबंध में मित्र मिश्र के निम्नलिखित शब्द उल्लेखनीय है। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि राजा को पृथ्वी का स्वामी कहते हैं, उसका स्वामित्व उस धन पर नहीं है जो भूमि से प्राप्त होता है। मानव से तात्पर्य जीवधारियों से है और जनसंख्या का अर्थ उन व्यक्तियों से है जो उस भूमि पर निवास करते हैं और भूस्वामी राजा को ही माना जाता है। अतः वह भूमि की उपज का छठा अंशधारी है। जातक ग्रंथों के अनुसार शासक अथवा सम्राट का दायित्व केवल प्रशासनिक है, इसके आगे वह नहीं बढ़ सकता, वह साम्राज्य का स्वामी नहीं है। यह सिद्धांत हिंदू राजतंत्र सिद्धांतों से और भी परिपुष्ट होता है। गुप्त शासकों एवं अन्य शासकों के अभिलेखों और शिलालेखों से यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि राजा को केवल भूमि का छठे भाग का ही स्वामित्व प्राप्त था, और वह भी उसकी उपज के रूप में, भूमि के रूप में नहीं। डॉक्टर विंसेंट स्मिथ एवं अन्य इतिहासकारों ने भूमि शासकों की संपत्ति होने के अपने सिद्धांत को अर्थशास्त्र पर आधारित होना बताया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन विद्वानों ने अर्थशास्त्र को ठीक ठीक समझा नहीं है। जिस श्लोक के आधार पर यह सिद्धांत निरूपित किया गया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में भूमि का स्वामी राजा नहीं वरन कृषक अथवा किसान होता था। राजा तो केवल उसका पालक और रक्षक था। इस प्रकार की विचारधाराएं प्राचीन भारत में अस्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। राजा का भू स्वामित्व और नंबर दो व्यक्तिगत स्वामित्व। अब दोनों पर पृथक पृथक विचार निम्नलिखित है। राजा का भू स्वामित्व, जैसा कि पूर्व ही उल्लेख किया जा चुका है कि वैदिक काल में भूमि पर सामूहिक अधिकार माना जाता था, परंतु राजतंत्र के विकास के साथ भूमि पर राज्य स्वामित्व का विकास होता गया। कुछ धर्म सुधारक जैसे अपस्तंभ का कहना है कि भूगर्भ से निकली हुई संपत्ति पर सामान्यतः राजा का अधिकार था। भूमि पर राजा के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने वालों में कौटिल्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कौटिल्य ने जंगलों और खानों पर राजा का अधिकार माना है। राज्य की भूमि पर सम्राट अपनी देखरेख में खेती करवाता था और बगीचे लगवाता था। किसान को भूमि राजा की ओर से ही दी जाती थी। यदि किसान ठीक से खेती नहीं करता तो उसकी भूमि जब्त कर ली जाती थी। अपने अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने इस तथ्य का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया है, इससे भूमि पर राजा का स्वामित्व स्पष्ट हो जाता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र की टीका करते हुए भट्ट स्वामी ने लिखा है कि राजा भूमि और जल दोनों का स्वामी है, और लोग इन दोनों चीजों को छोड़कर अन्य वस्तुओं का स्वामित्व ग्रहण कर सकते हैं। मनुस्मृति में भी राजा के भू स्वामित्व का उल्लेख हुआ है। मनु ने लिखा है कि भूमि से प्राप्त खनिज खजाने आदि पर राजा का अधिकार है। मेघातिथि ने भी भूमि के रक्षणत्व के अधिकारों से स्वामित्व को अलग नहीं किया है। मानसोल्लास में भी धरती पर राजा के अधिकार का उल्लेख है। मित्र के राजनीति प्रकाश में कात्यायन का एक उदाहरण प्राप्त होता है, जिसका तात्पर्य होता है कि राजा भूमि का स्वामी है और वह इसके छठे भाग का ही अधिकारी है। राजा के भूमिकर लगाने अथवा ताम पत्रों आदि के द्वारा भूमि दान करने आदि का भी उल्लेख प्राप्त होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में राजा भूमि का एकमात्र रक्षक और उसका स्वामी होता था। व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व। पूर्व मीमांसा में इस बात का उल्लेख है कि राजा यज्ञ के बाद सभी चीजें दान में दे सकता था, परंतु भूमि नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि राजा का भूमि पर सार्वभौम अधिकार नहीं था। जैमिनी का विचार है कि पृथ्वी पर सबका अधिकार है। सवर स्वामी ने राजकीय भूमि की रक्षा का अधिकार तो वह देता है, परंतु उसके स्वामित्व को सिद्ध नहीं करता था। मेघातिथि तथा अन्य कुछ ग्रंथकार राजा को भूमि का स्वामी मानते हैं। इसका तात्पर्य भूमि पर सामान्य संप्रभुता से लिया जा सकता है, किसी की भूमि के मालिक के रूप में नहीं। किसी के भूमि का असली मालिक तो उसको जोतने वाला किसान ही है। अभिलेख। कुछ अभिलेखों में भी इसी प्रकार के उद्धरण आए हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि लोगों ने अपनी भूमि को दान दिया है और उसको बेचा। इससे भी भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व सिद्ध होता है। ताम्र पत्रों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि राजा केवल राजकीय भूमि दान करता था। यदि वह कोई ग्राम दान में देता था तो इसका तात्पर्य केवल उससे होने वाला आय धन देना था। किसको को भूमि से अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं कि राजा ने भूमि खरीद कर दान में दी। इस बात का उल्लेख हुआ है कि भूमि दान देते समय राजा ने ग्राम सभा की अनुमति ली। इन सभी से भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार स्पष्ट होता है। निष्कर्ष। उपयुक्त दोनों विचारधाराओं के विवेचन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्राचीन भारत में सैद्धांतिक रूप से तो भूमि पर राजा का ही अधिकार था, परंतु व्यवहारिक रूप में भूमि विभिन्न व्यक्तियों के हाथ में ही थी। वे स्वेच्छा अनुसार भूखंडों पर कृषि करते थे, उन पर अपने भवनों आदि का निर्माण करते थे। वह अपनी भूमि को अन्य व्यक्तियों को भी किराए पर दे सकते थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में भूमि का स्वामित्व राजा का नहीं वरन प्रजा का या किसान का था तो अतियुक्ति नहीं होगी।